Hello and welcome to the Saturday live stream. This is Vimo Live, a live stream that happens every Saturday and Wednesday at 8 p.m. Wednesday wala members only hota hai, Saturday wala public hota hai. Aaj Saturday hai aur aaj hum log debate hour ki jagah ek special guest se baat karne wale hain. Hamare special guest ka naam hai Anurag Minus Verma. Unka YouTube channel tha Anurag Minus Verma aur unka khud ka ek podcast bhi hai. A lot of you know who he is. For those of you who don't know who he is, talk to the people in the chat and they will tell you. Don't waste my time. I will bring Anurag on screen momentarily, but before that, let me just remind you, the channel is monetized. If you want, you can support it on Patreon at patreon.com/vimo. You can also become a member of this channel by clicking the join button below and becoming a paying member. You can also send super chats, and if you're watching this video at a later point of time, you can click the super thanks button below and pay any amount of your choice. And I thank you in advance, and all that information will be on screen. Par आगे बढ़ने से पहले हम अपने गेस्ट को स्क्रीन पर ले आते हैं. देयर ही इज. हाय अनुराग.
हेलो हेलो. नमस्कार नमस्कार.
हेलो. हाउ इज योर डे गोइंग?
मैं आज पूरा दिन था ग्रेटर नोएडा में. आई वाज शूटिंग देयर, व्हिच इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट. एक्चुअली आई वाज एट अ यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, व्हिच वाज मेड बाय मायावती. So I was very surprised to see that university because it was filled with the Bahujan symbols. Like there are statues of Mahatma Jyotiba Phule, Birsa Munde, Sahib Kanshiram, Mayawati, Ambedkar Library. And inside that, there is also a Vipassana Center, a big pagoda meditation center inside that college. So that whole university seemed something like a utopia kind of a thing. So I visited that. So I spent my whole day just shooting, talking to people, and yeah, just doing stuff around. So yeah, that was my day, and just came back from that trip, and yeah, there we are.
Okay, so for those of us who don't know who you are, apni kahani batao. Like, aapki journey kahan se shuru hui? Aapka ek podcast hai is samay. पर आप जेएनयू में पढ़े हुए हैं, उससे पहले आपकी लाइफ क्या थी, आपकी एस्पिरेशंस क्या थी, और आप किस हद तक उन एस्पिरेशंस को मीट कर सके हैं, इसके बारे में बात एक बार करना चाहेंगे.
हाँ बिल्कुल. बट ये चैनल वैसे किस में, हिंदी या इंग्लिश? व्हाट डू यू
वांट? दोनों है, चलेगा, दोनों चलेगा.
कुछ भी कर सकते हैं, चलेगा.
या या, कुछ भी चलेगा. इट्स अ लाइव स्ट्रीम.
कूल कूल कूल. तो जर्नी एक्चुअली जब पीछे हम देखते हैं तो वी लुक एट द इवेंट वेरी सीक्वेंशियली, like as if it everything happened one sequence after another, but life in that way is too abstract to summarize ki sab kuch hua kaise. To main bhi jab piche dekhta hu to sequentially isko samajhne ki koshish karta hu ki har cheez ka order hai, but problem ye hai ki pura disorder hi hai life ek tarah se. To ab kuch main events isme mujhe yaad aate hain ki kya main banna chahta tha. Jaise bachpan mein to main cricketer banna chahta tha, ki main cricket khelna chahta tha. Fir uske baad mein jab main इंजीनियरिंग जब मैंने शुरू की तो मैं एक तरह से पूरी तरह से क्लूलेस था कि अभी मुझे करना क्या है, क्योंकि ये अपना एक बैकग्राउंड देखूं तो बचपन से ही काफी जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा तो वहाँ पे एक तो मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, तो उस चक्कर में हमारा ट्रांसफर बहुत होता था, तो हर साल स्कूल्स वगैरह चेंज होती रहती थी, तो इस तरह से दोस्त वगैरह ये सब नहीं बनते थे, तो एक बड़ा लोनली सा अजीब गरीब चाइल्डहुड मेरा रहा. और उसमें मेरे मार्क्स भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं आते, तो मुझे समझ नहीं आता मेरा काम क्या है. तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आता है क्लास एट्थ का, जब एक एनुअल फंक्शन पे कंपलसरी कर दिया जाता है कि हर किसी को एक एक्टिविटी में पार्ट लेना है जिसमें आप अच्छे हो, और मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. तो सबसे पहले मैंने कहा चलो परेड में पार्ट लेते हैं, तो परेड में गया तो मेरा थोड़ा सा माइंड मतलब बड़ा स्लो चलता था बचपन में, तो उन्होंने कहा लेफ्ट फुट, तो मैं राइट उठाता था, फिर बोलता राइट फुट में लेफ्ट उठाता, तो ऐसे से मुझे समझ ही नहीं आता था कैसे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे वहां से निकाल लिया. तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा बिगुल बजाता हूँ, तो फिर मैं बिगुल बजाने के लिए चला गया. तो फिर बिगुल बजा रहा हूँ तो उसमें बहुत फोर्स लगती है, दिखने में लगता है बिगुल बड़ा इजी उस तरह से बजता है लेकिन उसमें बहुत सारी फोर्स लगती है, तो वो भी वहां से भी मैं कैंसिल हो गया. फिर उन्होंने कहा कि चलो आप पिरामिड बन जाओ, तो उसमें क्या होता था पिरामिड्स बनते थे बच्चों के ऐसे सब ऊपर एक, तो उन घरों ने क्या किया कि मैं एक मतलब मैं ज्यादा उतना कुछ इन्फ्लुएंशियल नहीं था तो मुझे सबसे नीचे कर दिया, तो मेरे ऊपर पिरामिड बन गए बहुत सारे, तो उससे परेशान होके वो भी छोड़ दिया, मैं रोने लग गया, मैं भी मुझसे नहीं होगा. तो फाइनली फिर मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ कि डांस कर लेता हूँ, तो फिर एक बोगी बोगी डांस था, करो दाया हाथ आगे करो बाया हाथ पीछे और घुमाओ कमर को ऊपर नीचे, लेट्स डू बूगी बूगी। तो वो मैंने किया कुछ दिनों तक। तो वो करने के बाद जब एनुअल फंक्शन वाला दिन था तो वो डांस कैंसिल कर दिया उन्होंने कि ये इसके लिए फिट नहीं है। तो इस तरह के क्राइसिस थे, मैं हर तरह की फील्ड मैंने देखी और मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था कि बेसिकली मैं मेरा पॉइंट क्या, मतलब किसी भी चीज में अच्छा नहीं लाइफ। तो इंजीनियरिंग के टाइम पे आई थिंक जब मैं कुछ लिखने लग गया और मैंने सिनेमा को जब डिस्कवर किया, वर्ल्ड सिनेमा को स्पेशली, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्टर्स थे उस टाइम पे, स्लॉस्की था पोलैंड के और स्कॉट्स ऐसी थे और काफी और भी तरह जिम जारमुश थे अमेरिकन फिल्म मेकर। तो तब मुझे एक आइडिया आया कि हाँ ये जिस तरह से चीजों को सोचते हैं या देखते हैं तो मुझे इसमें जाना है। तो वहां से एक आर्ट फील्ड का थोड़ा दरवाजा खुला कि हाँ मुझे आर्ट या फिर क्रिएटिविटी या फिर इन चीजों के अंदर, लिटरेचर सिनेमा, इन चीजों में मैं शायद थोड़ा सा अच्छा हूँ। तो वो मैंने सोचा। तो इनिशियली मेरा जो इच्छा थी वो डायरेक्टर बनने की या कुछ राइटर बनने की थी। तो उसके लिए मैंने स्ट्रगल, बट समझ नहीं आता था कैसे करेंगे। मैं जयपुर में रहता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि करना क्या। तो वो जब मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ तो उसके बाद में मैंने कहा क्या करूं। तो मुझे जयपुर से निकलना था, एक स्मॉल टाउन में नहीं रहना था मुझे, क्योंकि उसकी जो मेंटेलिटी और जो सारी वाइब थी और जो मैं सोचता हूँ उसके बिल्कुल अपोजिट थी। मैं मुझे ताकि मुझे एक बड़े शहर में रहना है। तो उस टाइम पे कुछ कॉल सेंटर के कुछ इंटरव्यू चल रहे थे, तो मैंने कॉल सेंटर का इंटरव्यू दिया। तो इसके थ्रू मैंने कॉल सेंटर में काफी काम किया, 7-8 महीने अमेरिकन कस्टमर्स के लिए और ब्रिटिश कस्टमर के लिए। और मेरा नाम कुछ पता नहीं क्या था, रॉन वगैरह कुछ था, हेलो वेलकम टू आई यू की माय नेम इज रॉन, ऐसा कुछ था, माय नेम इज रॉन, हाउ मे आई हेल्प यू। तो
रॉनी मल्होत्रा वैसे है,
हो सकता है। तो वहां से ये टेक्निक आई, मेरे लिए अच्छा था कि मुझे इंग्लिश उस टाइम नहीं आती थी, तो मैंने कहा चलो कॉल सेंटर के थ्रू थोड़ी इंग्लिश में सीख जाऊंगा बोलना। तो इस तरह से मैंने किया, थोड़े पैसे वैसे भी आ रहे थे 7-8 महीने के लिए। तो फिर उसके बाद में भी मुझे कुछ समझ नहीं आता एग्जैक्टली कहाँ जाऊँ, तो मैं बॉम्बे गया स्ट्रगल करने के लिए। स्ट्रगल बोलने को ही था, मैंने किया कुछ नहीं वहाँ पे स्ट्रगल, क्योंकि मुझे मतलब एक दिमाग में था कि इसमें काम नहीं करना है, मेरी फिल्म उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था जिस तरह की बॉलीवुड फिल्म बनती। तो मेरे दिमाग में था कि इसमें कुछ करना नहीं होने। तो वही सारा नेगेशन ही चल रहा था। फिर JNU फिर मैं गया, JNU में मैंने मास्टर्स ऑफ आर्ट इन एस्थेटिक्स किया। तो वो थोड़ा सा फिर मुझे को लगा चलो थोड़ा ट्रैक पे। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट से मैंने वीडियो एडिटिंग की ट्रेनिंग की और फिर उसके बाद बॉम्बे में काफी टाइम तक रहा मैं। और वहां पे भी कुछ एग्जैक्टली नहीं समझ रहा था करना क्या। तो मैं पोएट्री लिखता था, पोएट्री की बुक लिखी मैंने, आई लव लव इन द टाइम ऑफ पोकेमोन। फिर उसी टाइम पे एक शॉर्ट स्टोरी की किताब लिख दी, क्या था उसका नाम, आई लव यू बट ओनली ऑन वीकेंड। बट ये सारी चीजें जिनको कोई पढ़ता नहीं था, ऐसे ही मतलब मैं कर रहा था, कहीं जा ही नहीं रही थी चीजें कहीं भी। तो और कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो फिर आई थिंक ये जब ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो पता नहीं मेरे दिमाग से थोड़ा सा डर सा कुछ, जो जिन डर के साथ में जीता था वो खत्म सा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया है। मैं इसको देखता हूँ तो एग्जिस्टेंशियली अगर ये ऐसे हो गया कि आसपास इतने चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है और इतना अनसर्टेन हमारा फ्यूचर है, तो मैंने कहा चलो टाइम कम है, जल्दी बोल दो जो करना है। तो मैंने बड़ा अर्जेंसी के साथ आई एंटर्ड इंटरनेट, इट वॉज टू बी वेरी अर्जेंट, लाइक अर्जेंटली मुझे कुछ बोलना है बहुत जल्दी और बिना किसी डर के। तो थ्रू देन इंटरनेट के साथ फिर चीजें शुरू हो गई। और पहला वीडियो मुझे याद है मैंने डाला था, मोदी जी का वीडियो डाला था, एक डबिंग वीडियो की, मतलब मैंने खुद डब किया था कि कोरोना के लिए करें, अरे आप कहाँ छुपेगा कोरोना, कहाँ छुपेगा। तो वो थाली पीटने वाला था, मतलब तुझे थाली।
हाँ, आपका वो जो पूरा सीरीज है जहाँ पे एक एनिमेटेड फेस के साथ आप मोबाइल वीडियो थे, वो वाली सीरीज की बात कर रहे हैं।
हाँ, तो उस टाइम भी शुरू हो गया, फिर वीडियो डायरी शुरू हो गई और फिर ये सारी चीजें। अचानक मैंने देखा कि उससे पहले जो मेरा पेज का नाम था वो न्यू एज पोएट्री था, तो उस पे मैं पोएट्रीज लिखता था जिसपे 2-3 लाइक आते थे और 40 हैशटैग भी मारता था उस पे भी कुछ नहीं आता था। फिर नीचे आता था फॉलो फॉर फॉलो, मतलब आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं आपको फॉलो करूंगा। तो इस तरह से मैं ये सब उनको फॉलो कर देता था, फिर कई बार वो मुझे फॉलो नहीं करते थे। सो आई वाज यू नो विक्टिम ऑफ ऑनलाइन स्कैम मेनी टाइम्स। और इस तरह से मेरे 109 कुछ 110 फॉलोअर थे उस टाइम पे। तो वही ये सारी चीजें हुई, फिर अचानक ही मैंने देखा है तो कुछ और ही दुनिया में मैं पहुंच गया। तो उस टाइम से जैसे ही ये चीजें शुरू हुई तो मुझे एक वॉइस मिल गई खुद के लिए कि मुझे क्रिएटिवली किस एक्सप्रेशन में काम करना है। तो वो हो गया। तो फिर पॉडकास्ट ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे डेवलप होने लगी। तो इनिशियली हाँ स्टार्टिंग मतलब इसी तरह से हुई और एक बहुत ही एब्सर्ड तो कोई कोई मुझे पूछता है कि क्या एडवाइस दूं, मुझे खुद को नहीं पता कि ये चीजें कहां से, क्योंकि मैं टेरिटरीज में जा रहा था, सेंस नहीं था, देयर वाज नो सेंस ऑफ एनीथिंग, आई वाज जस्ट, तो इसीलिए मेरा जो नथिंग में ये सारी चीजें जिसमें निहिलिज्म और थोड़ा सा ये नथिंगनेस और इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट भी इसीलिए है कि ये कुछ बहुत एब्सर्ड है दुनिया, कुछ मैं बोल नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे यहाँ पहुंच गए नहीं पता, तो मैं किसी को क्या एडवाइस दूं। तो हाँ बेसिकली ये इस तरह की जर्नी।
मैं भी वही पूछने वाला था कि आपका इस समय अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन बताएगा तो वो कंटेंट क्रिएटर स्लैश पॉडकास्टर है, है ना?
मतलब पता नहीं मुझे, मैं राइटर भी हूँ, लिखता हूँ काफी,
नहीं वो तो मैं भी
पोर्टल्स के लिए लिखता हूँ तो वो सारी चीजें हैं। तो अब मैं
राइटर होने का ये है कि आप राइटर होते हैं,
इसके अंदर वो जाना चाहता हूँ हर चीज को थोड़ा।
हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, अगर इंटरनेट नहीं होता तो मैं अपने आप को राइटर ही कह रहा होता, इनफैक्ट मैं बहुत समय तक अपने आप को राइटर ही कह रहा था, बट देन इंटरनेट आया एंड यू डिस्कवर सडनली दैट यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए या कंटेंट बनाने के लिए, और फिर वो काम आने लगता है एंड देन सडनली राइटर बिकम्स दिस, मैं राइटर भी हूँ। तो मैं भी आपको ही पूछने वाला था, मतलब मोटिवेशनल लोगों को क्या एडवाइस देंगे, पर पता चला आपके आप तो सीक्वेंशियल इसमें विश्वास ही नहीं करते, आपको लगता है लाइफ केओस है।
हाँ मतलब मोटिवेशनल तो बहुत, मुझे तो बहुत बड़ा वो लगता है, स्कैम सा लगता है ये सारी चीजें जितनी भी है,
हर कोई अपने
और इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर पकड़े गए
बिंद्रा था वो पकड़ा गया था, उससे पहले कोई और था
इंडिया में,
एक और मतलब साइडवेज मूवमेंट का किया है कि पहले धर्म की चर्चा करो और फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, अभी कोई रिसेंटली बनी थी, शी वाज इस सब सम इस्कॉन टाइप पर्सन एंड शी गॉट अ कंटेंट, लाइक अभी जो अवार्ड दिए थे प्रधानमंत्री जी ने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को, उनमें उनको मिला था।
आप तो बुलाए नहीं इसमें,
मुझे क्या
बुलाए नहीं वहां पे,
नहीं मुझे क्यों बुलाएंगे, पागल हो गए,
मुझे भी आप दोनों को नहीं बुलाया
मुझे लगता है हमको अपना खुद का अवार्ड सिस्टम शुरू करना चाहिए, हर साल कुछ यंग क्रिएटर को चूज करके उनका अवार्ड देने चाहिए।
हाँ मतलब पता नहीं अभी एक्चुअली ये वर्ल्ड, वैसे अपना सीरियस नोट, ये पूरा जो ऑनलाइन और ये सारी चीजें है ना, ये इतना बिखरी हुई चीज है कि उसके अंदर, जैसे मुझे ऑनलाइन वर्ल्ड इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो बहुत मतलब बहुत कंपल्सरी और बहुत ज्यादा मैंने ऑनलाइन में ही ज्यादा मुझे ऐसा लगता है टाइम बिताया, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ शुरू में, क्योंकि बड़ा लोनर का मीडियम है और आप इसमें इतनी सारी सब जॉनराज हैं कि आप घुसते जाते हो, तो मैंने इसमें बहुत उस तरह से टाइम बिताया, तो मुझे इसका ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है कि पूरा तरह से डिसेंट्रलाइज है ऑनलाइन या इंटरनेट, सारी चीजें हर तरफ बिखरी हुई है और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, तो इसीलिए मुझे अवार्ड्स और ये चीजें इसमें इतनी इडियोटिक लगती है, इसका मतलब होता है कि आप कहीं से साथ होके एक
सेंट्रलाइज करने को
जगह जा रहे हो, हाँ एक सेंट्रलाइज तरीके से जा रहे हो, कुछ बना दिए,
हम लोगों को लेजिटिमाइज करने के लिए अवार्ड देंगे, वो वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हो अब तक, पर अब फर्क नहीं पड़ता इनफैक्ट,
कोई प्रेस्टीजियस अवार्ड भी नहीं है, जैसे सिनेमा वगैरह में प्रेस्टीजियस अवार्ड्स वगैरह होते हैं कि उसमें टाइम लगता है उस कल्चर।
हां ये अवार्ड तो देख के लगा, ये अवार्ड देख के लगा दो दिन के नोटिस पे बनाए थे, ध्रुव राठी ने हम पे वीडियो बना दिया, जल्दी से एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करो और 10-20 लोगों को बुला लो अवार्ड देने के लिए, ऐसा लग रहा था वो।
ये भी स्टूपिड है, ऐसे इन जनरल सारे स्टूपिड है, और कोई अवार्ड कॉस्मो और ये सारे होते हैं बहुत स्टूपिड अवार्ड होते हैं, तो इन जनरल ये कोशिश करना चाह रहे हैं क्रिएटर को कुछ देने की, बट अभी कुछ बना नहीं पाए उन्होंने एक ऐसा कुछ प्रेस्टीजियस मॉडल जिसके थ्रू कुछ सीरियस लोग देखें ज्यूरी के हिसाब से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ऑल्दो मैं इसमें बिलीव नहीं करता क्योंकि
आपको देते तो आप जाते एक्सेप्ट करते अवार्ड
मुझे
सोचना
पड़ेगा,
एटलीस्ट उसके अंदर से एक अच्छा सा ब्लॉग बन जाता, पिछले रविवार अवार्ड पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो हो सकता था,
आयरोनिकली कर सकता था, आयरोनिकली जैसे अशोका यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया था उन्होंने,
हां
तो मैंने एक वीडियो बनाया उनके उनके यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वो काफी गुस्सा हो गया उससे, काफी लोग गुस्सा हो गया, उनका एडमिन बड़ा गुस्सा हो गया उससे तो उस चक्कर में, तो ऐसा कुछ बना सकता था। एक हमारे इंडिया में ये भी है कि ह्यूमर को हम लोग ना इतना अटैक की तरह लेते हैं कि as if I attacked somebody. अगर मैंने तुम किसी पे जोक मार दिया, then that means I hate that person and I am attacking that person and I want to destroy that. I don't understand that.
आप किसी चीज का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप उसको बहुत पसंद करते हैं. लाइक जैसे मुझे स्टार ट्रेक बहुत पसंद है, मैं स्टार ट्रेक के बारे में सुबह से रात तक जोक मार सकता हूँ, राइट. पर एक दूसरे लेवल पे हमारे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जो अर्बन स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जो कहते हैं नहीं मैं तो किसी का मतलब आई एम नॉट अटैकिंग एनीवन एंड माय पोजीशन इज तुम कर रहे हो अटैक और तुमको करना भी चाहिए. लाइक देयर आर पीपल हु डिजर्व योर अटैक. मतलब पीपल मोर पावरफुल देन यू डिजर्व योर अटैक एंड यू शुड अटैक देम. बट इंस्टेड तुम्हारे सारे जोक्स उन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते. सो एक तरीके से मुझे लगता है जो कॉमेडियन है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो उनके पास एक वेपन है और फिर कॉन्शियसली उसका इस्तेमाल करना चाहिए उन लोगों को अटैक करने के लिए जो अटैक डिजर्व करते हैं.
नहीं वो है, और इंडिया में इसीलिए फॉर्म कुछ ज्यादा इतनी इवॉल्व नहीं हुई जिसका बड़ा रिस्पेक्टेबल फॉर्म समझा जाए कि बड़ा सीरियस कल्चरल एक उसका सिग्निफिकेंस है कि कल्चर का हिस्सा है. अगर कोई स्टैंडअप कॉमेडियन कुछ बात कर रहा है तो कल्चरली उसका एक हिस्सा है, पॉप कल्चर में लोग सीरियसली ले रहे हैं. जैसे यूएस वगैरह में होता है कोई कॉमेडियन ने कुछ बोल दिया फिर कुछ कर दिया तो उसको एक पॉप कल्चर के हिसाब से उसको डिस्कस किया जाता है. बट इंडिया में लाइक कोई सीरियसली लेता नहीं, नोबडी केयर्स. तो वो इसीलिए
इंडिया में कोई
कॉमेडियंस ने इतना सीरियसली गए नहीं उस चीज को समझने के लिए, सोसाइटी की लेयर्स को समझने के लिए.
हाँ, क्योंकि अक्सर ये जो कॉमेडी सोशली इफेक्टिव होती है वो एक मतलब वो एक पोजीशन ऑफ लैक ऑफ प्रिविलेज से आती है, ताकि क्योंकि जैसे रैप म्यूजिक का जो उदय हुआ उसी वजह से हुआ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए या उनके बारे में कंप्लेन करने के लिए बना था और फिर वो इतना मेन स्ट्रीम बन गया कि अब तो मतलब कुछ और ही हो गया वो. बट कुछ लोग अभी करते हैं. वैसे सिंस ये एक एथिज्म रिलेटेड चैनल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि रिलीजन का सोसाइटी में रोल आप कैसे देखते हैं?
यार मेरे वही पॉइंट्स हैं बहुत ही, जो आप मुझे पता है आपके यहाँ पे 10-20,000 बार डिस्कस हो चुके होंगे, बट मैं भी चाहूंगा इनका आंसर लेना, थोड़ा आपको पकाऊंगा. लेकिन रिलीजन का जो रोल, जैसे मैं किसी के साथ डिस्कस करता था कि एक एक रिलीजन का एक अपना एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का होता है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज मॉरल, क्या इमोरल है. तो अगर रिलीजन मेरे हिसाब से पूरी तरह से हटा दिया जाए तो जो जनरल पब्लिक है वो शायद इतनी इवॉल्व नहीं है कि वो खुद के अंदर चली जाए या फिर इतना अच्छे से वो सोच सके, डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सके और अपना एक राइट और रॉन्ग का जजमेंट बनाए. तो इसी हिसाब से इनिशियली अगर रिलीजन का पर्पस अगर देखा जाए तो इसमें है कि मॉरल क्या है, इमोरल क्या है, मे बी व्हाट एवर यू आर डूइंग यू मे फियर बिकॉज देयर इज समबडी हु इज वाचिंग यू ऑल द टाइम. सो दैट फियर मे बी वो एक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट को शायद रोक सके. ये पर्पस इनिशियली होना चाहिए, वो हुआ नहीं ऑब्वियसली, उसके इंटरप्रिटेशन हमें पता ही है किस तरह के हुए. तो रिलीजन एक इफ इट ऑपरेट्स एज अ कोड टू लिव योर लाइफ, एज अ गुड कोड, मॉरल कोड, गुड कोड, देन इट कैन बी useful for the individual and the society. जो बुद्धिज्म काफी हद तक मेरे हिसाब से इस तरह का, मैं मानता हूँ कि रिलीजन अगर उसका ओरिजिनल फॉर्म में अगर आप देखो तो वो उस हिसाब का है. बट अब वो रिलीजन का क्या आगे जाके उसका इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन किस तरह से हुए, तो उसमें तो एक जबरदस्त तरह की रिजिडिटी है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. और उन्होंने रिलीजन ने एक आपको वो भी दे दिया, नहीं पहले तो है कि आप अच्छा करो बुरा करो, रिलीजन ने तो ये भी दे दिया कि चलो अब इसका भी हैक है, आपने बुरा कर दिया तो आप ये कर सकते हो, गंगा में चले जाओ, मतलब आप गंगा नहलो तो हैक कर दिया, बोल दो इसका हैक है, चलो कोई बात नहीं, आपने ये सब मारा आप ये कर लो, ये पूजा करा दो, ये आपसे आपका ठीक हो जाएगा. या फिर कुछ इस्लाम में होगा कि आपने ये कर दिया तो आप यहाँ चले जाओ ठीक हो जाएगा, तो उनका भी एक उन्होंने हैक ढूंढ लिया. तो ये मेरे हिसाब से ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन है कि रिलीजन एक तरह से एक पर्सनल डेवलपमेंट का या फिर एक कम्युनिटी सेंस क्रिएट करे लोगों के अंदर, वो है जो कि हिंदुइज्म में तो ऑब्वियसली है नहीं इस तरह की कोई कम्युनिटी सेंस, क्योंकि सारी जातियों में बटी है और हर जाति एक दूसरे से सुपीरियर होने की लड़ाई लड़ती
है. वो कम्युनिटी सेंस है पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग कम्युनिटीज एक रिलीजन के अंदर, ओवरऑल एक रिलीजियस कम्युनिटी नहीं,
माइक्रो सेंस, और वो एक दूसरे से फिर वो उनमें टकराव और इस तरह की स्थिति पैदा होती है. तो मेरे हिसाब से वो एक पर्पस हो तो वो ठीक है। तो आप बताइए आपको इसमें किस तरह की चीजें लगती है इस आर्ग्यूमेंट।
मुझे क्या, हाँ मुझे लगता है कि आप जिस चीज को रिलीजन कह रहे हैं मैं उसको लाइफ की फिलॉसफी कह सकता हूँ, मतलब जिंदगी को जीने का तरीका मैं वो कह सकता हूँ। फिलॉसफी डेफिनेटली उसकी जगह है लाइफ में। रिलीजन क्या होता है पता, रिलीजन फिलॉसफी जब सड़ने लगती है तो रिलीजन बन जाती है, और इसीलिए मैं रिलीजन नहीं कहता उसको। मैं कहता हूँ कि हाँ तुमको लाइफ जीने का एक कुछ रूल्स हैं जो एक टीचर ने तुमको प्रोवाइड किया है। जैसे आपने बुद्ध की बात की, समय के साथ वो सड़ने लगता है क्योंकि जो शुरू करता है वो कुछ और लोगों के हाथों में छोड़ के जाता है, और फिर वो लोग उसके ऊपर अपना तड़का लगाते हैं, और फिर 10-20 प्रकार की दाल बन जाती है। उनमें से सारी दाल टेस्टी नहीं होती, कुछ दाल एक्चुअली हार्मफुल होती है। सो मुझे वही लगता है, और इसीलिए जहां तक फिलॉसफी का सवाल है, मुझे लगता है कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि रिलीजन ये क्लेम ना कर सके कि हम ही फिलॉसफी का सोर्स हैं। फिलॉसफी इज समथिंग मच ओल्डर,
ऑब्वियसली।
या सो रिलीजन से प्रॉब्लम मुझे वो है, बट कई बार ये डिस्कशन सेमांटिक्स में खो जाती है। फिलॉसफी के बारे में बात करता हूँ, लोग समझते हैं मैं रिलीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं रिलीजन को कुछ बोलता हूँ, लोग बोलते हैं अच्छा तुमको लाइफ में फिलॉसफी नहीं चाहिए। नहीं, मैंने वो नहीं कहा, तो ऐसे हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी इस चीज में एक्चुअली और सोच रहा हूँ, क्योंकि रिलीजन पर्सनली मैं तो किसी भी रिलीजन में मानता नहीं हूँ, बट बुद्धिज्म को लेके मेरा झुकाव थोड़ा है, तो उसको मैं थोड़ा अभी कोशिश कर रहा हूँ समझने की कि किसी ढंग से इसको समझूं। तो उसपे मैंने काफी पॉडकास्ट भी किए, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इसमें मुझे शायद कुछ मिल सके। तो अभी तक उसमें उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूँ, बट समझने की कोशिश कर रहा हूँ बुद्धिज्म को। और बाकी रिलीजन से तो मुझे उतना कोई ज्यादा कोई खास होप है नहीं,
उम्मीद नहीं है,
उम्मीद नहीं। और मेरा खुद का बैकग्राउंड मेडिटेशन में, जैसे विपस्ना मैंने काफी किया, दो बार किया, तो वो एक पर्सनल एक जुड़ाव भी उससे है मेरा।
आपको विपस्ना करना, आप तो विपस्ना के बारे में बात करते हैं, आपको विपस्ना की जरूरत क्यों महसूस हुई और विपस्ना करने के बाद आपको क्या फायदा हुआ?
उस टाइम पे जब मैं कर रहा था तो वो वाला फेस था जब कॉल सेंटर में काम किया और ये किया, तो मेरा मेंटली आई वाज नॉट फीलिंग वेरी गुड, तो और काफी इश्यूज चल रहे थे पर्सनल एंड तो, और सबसे बुरी प्रॉब्लम थी मेरी रेसिंग थॉट्स की, लाइक थॉट्स एकदम इस तरह से आ रहे हर टाइम, तो मैं थक जाता था इतने में कर रहे यार। कभी कभी लगता है हेलमेट पहन के चलो, इतने थॉट्स चलो कभी गिर ना जाओ कहीं तो वो थॉट्स और वो रुक ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या हो रहा है, मेरे को एक पॉइंट पे मैंने कहा यार आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, कुछ तो करना पड़ेगा, समथिंग हैज टू बी डन। और मेरा फोकस का बहुत इशू था कि आई कुडंट फोकस ऑन एनीथिंग। मैं एक चीज शुरू करता हूँ, दो लाइन लिखता था और वो खत्म हो जाता था। तो विपस्ना को मैंने एज अ टेक्निक टू कॉन्सेंट्रेट बेटर फर्स्ट, एंड सेकेंड एज अ टेक्निक टू काम डाउन द माइंड, वो सब के लिए मैंने उसको स्टार्ट किया। और तीसरा उसका एक कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो दोनों ही एक बहुत ही पासिंग फेज है, जो हैप्पीनेस और सैडनेस, तो वॉट एवर यू ऑब्जर्व देम लाइक फेजेस, लाइक देयर इज नथिंग यू नो वेरी यूनिक अबाउट इट। तो वो जब ऑब्वियसली सिर्फ एक थॉट है, बट यू गो इनटू मेडिटेशन एंड यू डू दिस थिंग, देन यू वो आप चीजें समझने लग जाते हैं, अच्छा ये दोनों थॉट आपको इतना फिर ज्यादा कुछ पागल नहीं कर देते, लाइक बहुत खुशी की चीज है तो मैं पागल हो जाऊंगा, अरे बहुत, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद दुख आने वाला है, अब बहुत दुख की चीज है तो उसके लिए पागल होगा, मुझे पता है इसके बाद कुछ फेस चेंज हो जाएगा। तो वो एक अवेयरनेस जब से हुई मेरे, अवेयरनेस बोल लूंगा मैं, एज मतलब एज अ थॉट तो ये बहुत सिंपल है, सभी को पता है, बट वो जब मैंने मतलब मेंटली उस चीज को मैंने एकदम पकड़ लिया, देन आई थिंक आई बिकेम वेरी काम डाउन इन माई लाइफ एंड आई गॉट सम सेंस ऑफ डायरेक्शन बाय दैट। तो वो रहा, लेकिन इस थॉट पे आने में मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं मेडिटेशन करके आया, तो कहानी बता चुका हूँ बहुत बार, आई बिकेम स्पिरिचुअली एरोगेंट बिकॉज आई थॉट आई एम द स्पिरिचुअल
दैट हैपेंस
who's awake और ये लोग सो रहे। तो जैसे ही
ये कब की बात है वैसे, आपकी उम्र क्या थी?
2012 की, 2012 की बात है।
अच्छा, ओके,
कितना 12-13 साल हो गए, 10-12 साल हो गए।
या मुझे तो I'm at an age where 2012 seems like it was 2 years ago। मुझे हर साल कोई मतलब 2000 के आफ्टर द ईयर 2000 एनीथिंग. आई रियलाइज इट्स बीन 24 इयर्स, बट मुझे कोई भी बोलता मुझे लगता था ये तो आपकी बात है, अभी मैं था कॉलेज में था ऐसा कुछ था.
नहीं नहीं मेरे को लगता कुछ अजीब गरीब को ऐसा था जो मैं शामिल था मुझे वैसे. बट एनीवेज तो उस टाइम पे ये सब चीजें हुई एंड देन आई रियलाइज दैट आई स्टार्टेड गेटिंग लिटिल बिट अटैच्ड टू दैट फीलिंग दैट मेडिटेशन गिव्स आफ्टर 10 डेज व्हिच इज अ एम्प्टी माइंड और उस तरह की चीजें. एंड देन आई रियलाइज कि मे बी दिस इज ऑल्सो एंटी विपस्सना. सो इफ यू रियली like vipassana or if you want to understand it then be detached from this as well, don't take it seriously. Yeah. Don't take it as a solution. So I never give anybody solution ki isme ja ke kuch ho jayega ya fir ye bahut aapke liye essential hai. You have to completely detach from that as well. To uske baad main kabhi gaya nahi, ek baar gaya tha, do baar gaya tha, now I do my own thing, but I don't take it as a kuch magical hai aur sabko karna chahiye, aise kuch change ho jayega.
It's
one of the way, there are many other ways as well.
तो आज जहाँ पे गए थे यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एक विपासना सेंटर था. सो यू वांट टेम्पटेड टू गो डू सम.
नहीं विपासना का एक्चुअली वो कोई है नहीं कि आपको कहीं शांति में करना है, बैठ के करना है, आप कहीं भी कर सकते हो. लाइक एक पॉइंट पे इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज बेसिकली मेडिटेशन, इट्स नॉट अ मैजिक और एनीथिंग. It's just centering your mind through the, I mean, it, you can do it anywhere. So, wo itna usko kuch nahi hai.
Okay.
So itna mere liye koi sacred cheez nahi hai. I don't take anything as a sacred thing. Ye mere liye sacred. Oh, ispe main kuch nahi mere liye sacred. Kuch bhi sacred nahi hai. Like I explore thing, theek lag raha hai. Jab nahi laga, usko chhod do. Jab work kar raha hai, tab kar lo. Something like that.
Okay. So I'll get to that. I'll just want to remind everyone watching, if you have questions for Anurag, leave them in the chat. I'll get to them towards the end of the stream and we will ask him some of your questions. So cool. मैं विपासना के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे भी विपासना रेकमेंड की गई है, पर मैं ऐसा इंसान हूँ जो बिना मेडिटेटिव हुए दो दिन तक चुपचाप रह जाता हूँ कभी कभी. Like a word doesn't come out of my mouth and विपासना में like I suppose there is an additional level of removal from thought which I don't do because I don't think I know how to live without thinking. पर जहां तक चुप रहने का सवाल है, इन एक्शन का सवाल है, वो मेरे लिए काफी नेचुरल होता है. मुझे मतलब उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता. सो आई सपोज दैट्स एन
ऐसा कोई जरूरी नहीं है. लाइक बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं अरे दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज यू शुड डू दिस. मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड होती है, पर्टिकुलर अवेयरनेस होती है एंड देयर आर मेनी डिफरेंट वेज यू कैन अचीव दैट. सम पीपल आर बोर्न विद इट, उनको जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा ही रहते. कई लोगों के लिए मेडिटेशन काम ही नहीं करता क्योंकि उनके थॉट्स वो जब करते हैं तो बहुत वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको कंट्रोल नहीं होता, तो वो मेडिटेट नहीं करते.
आई थिंक मैं उनमें से एक हूं. मेरे लिए सोचना बंद करना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. लाइक आई हैव ट्राइड.
मैं कर देता हूं.
मैं जे कृष्णमूर्ति की किताब पढ़ रहा था, उसमें ही सेज thought is the enemy and I'm like how the fuck do I stop thinking? I don't know how to do that.
नहीं मेरा एक ये एबिलिटी है लाइक इफ आई एम ऑन वेकेशन और कहीं पे मैं जा रहा हूँ, जो जो मुझे जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट है जैसे छुट्टियां उसमें ट्रैवल वगैरह में, देन आई हैव दिस हैबिट टू लाइक मेरे दिमाग में एक थॉट भी एंटर नहीं होगा. आई कैन आई हैव दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल. तो इसीलिए मुझे दोबारा सोचने में बहुत टाइम लगता है कई बार. मैंने कहा जैसे छुट्टी में बैठा और कोई अचानक से थॉट आ जाता है छुट्टी में, कहा ये क्या हो रहा है, फालतू के थॉट्स कैसे आए, थॉट कैसे आ सकते हैं. इट फील्स लाइक सम काइंड ऑफ योर असॉल्ट ऑन द पीस. वो स्टेज आई कैन अचीव ऑटोमेटिकली. तो या आई गो इन एंड आउट ऑफ थिंग्स. लाइक कभी हो गया बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ तो खत्म हूँ, देन आई ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू स्विच ऑफ एवरीथिंग एंड या बी दैट्स
ओके.
And I think both are important. और एक meditation का मैं ये भी बोलना चाहता था कि present day में ना meditation का इतना worse interpretation निकाल दिया, especially इन गधे influencers ने. उन्होंने कह दिया कि meditation मतलब good vibes, positive vibes, being detached, no political, no इसमें कोई भी आप बुरी news ही ना पढ़ो, आप एक रहो, आप हमेशा काम रहो. अरे ये नहीं होता meditation. Meditation is awareness. और meditation में ये नहीं है कि आपको आपको गुस्सा आ रहा है तो भी आने दो, it's okay. Meditation is awareness basically of being centered, that the and being centered and the awareness, and now you can take any decision you want to take. That's the whole idea of it. So isme ye nahi hai ki mujhe sirf positive aayegi. Aap negative vibe bhi dekho, positive bhi dekho, sab cheeze dekho, sab world ko samjho. Ye sari cheeze usi ka hissa hai, world ke andar rehne ka hissa hai. ये कोई डिटैचमेंट नहीं है दुनिया से कि अभी भाई कोई न्यूज ही नहीं पढ़ूंगा मैं, या फिर ऐसी कोई ट्रिगरिंग चीजें नहीं पढ़ूंगा, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ूंगा, कि ये बहुत स्टूपिड उन्होंने एक मेडिटेशन को बना दिया जो करंट फॉर्म में जो ये इन्फ्लुएंसर टीच कर रहे हैं कोर्स
उसको एक एपथी का टूल बना दिया है। पर एक और मोड भी है उसका, जिसमें लोग कहते हैं मेडिटेट करने पे सुपर पावर्स आ जाते हैं, तो हवा में उड़ने लगते हो, ये देखो कोई बाबा बर्फ में बैठा हुआ है, बर्फ से कवर्ड है के, और या कोई हवा में उड़ रहा है, या किसी ने अपने हाथ से पत्थर तोड़ दिया, ये सब मेडिटेशन से हो रहा है, विच इज अनदर लेवल ऑफ समथिंग।
अच्छा, मैं इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड था अपनी लाइफ में कि एक कॉन्शियसनेस होती है जो सुपर कॉन्शियसनेस होती है, तो मेडिटेशन में बहुत जिद्दू कृष्ण मूर्ति ओशो सब मैंने सबको बहुत अच्छे से आई फॉलोड एवरीबॉडी एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू गो, और मुझे लगता था कुछ सुपर कॉन्शियसनेस होती है फिर जो है कि जो हम देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग हैं वो एनलाइटेंड है उनकी कॉन्शियसनेस बहुत ही ऊपर है, या फिर जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग है शायद वहां तक पहुंचना है या फिर करना, तो वो मेरे दिमाग में टूट गया कुछ साल पहले, कोई दुनिया में किसी के पास भी कोई भी सुपर कॉन्शियस ऐसी नहीं होती,
इंसान
को आप ढंग से देख जस्ट पीपल हर इंसान को आप ढंग से देखोगे ना तो उनके वही वही इशू दिखेंगे, वही प्रॉब्लम्स दिखेगी, इनसिक्योरिटी दिखेगी, सब कुछ दिखेगी, किसी के अंदर भी नहीं है। जबकि ओशो को मैं बहुत मानता हूँ, उसकी हिंदी टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं ढंग से समझने लगा, मैंने कहा अरे ओशो ने जो हिंदी में जो अच्छी अच्छी बातें कही थी वो ये अमेरिका जाके उसका बिल्कुल उल्टा किया है, ही गॉट अटैच्ड टू द पावर और बिल्कुल गुस्से हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, तो सारी वो चीज का अपोजिट है, तो वो ठीक है ह्यूमन ही है, वही मेरा पॉइंट है, कोई
एग्जैक्टली
सुपर कॉन्शियस कुछ भी नहीं है कि सुपर कॉन्शियसनेस कुछ है, आप जिस सिचुएशन में उसमें रिस्पॉन्ड करो अच्छे से, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग व्हिच इज समबडी हु हैव अचीव्ड इट, समबडी हु इज हायर देन यू, ऐसा कुछ
नहीं है। या मुझे तो लगता है ये जो जैसे आपने ओशो की बात कही ना कि उसके शब्द कुछ ही कहते थे यहाँ पे, अमेरिका के कुछ और कहने लगे, मुझे लगता है कि इफ देयर इज समथिंग रिजेंबलिंग कोई स्पिरिचुअल गुरु या मास्टर या टीचर ऐसा कुछ है, आई थिंक वो होता है बस एक ही चीज, एंड दैट इज एंटरटेनमेंट, बिकॉज दैट्स एसेंशियली व्हाट ओशो इज डूइंग, दैट इज एसेंशियली व्हाट एवरी बाबा इज डूइंग। एक कॉमिक बुक राइटर हैं एलन मूर करके, उन्होंने एक बार पॉइंट आउट किया था कि हम लोग पूछते हैं कि जादू क्या है, राइट, और जादू होता क्या, जब हम जादू देखते हैं एक शब्द बोला और रियलिटी को चेंज कर दिया, राइट, दैट्स जस्ट राइटिंग। अगर आप किसी, अगर कोई बहुत सेंसिटिव है, आप उसके सामने जाके ड्रेन टट्टी वगैरह की बात करेंगे तो उसको उल्टी हो जाएगी, आपने शब्द का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंज ला दिया। आप किसी को रुला सकते हैं, किसी को हंसा सकते हैं, किसी को गुस्सा कर सकते हैं, उसके ब्रेन में केमिकल प्रोसेसेस को आप शब्द से चेंज कर रहे हैं, सो दैट्स बेसिकली जस्ट वर्ड्स। तो ये जो शामन थे पुराने जमाने में जो ट्राइब्स और जंगल के बीच का बैलेंस रखते थे, वो भी कहानियों का इस्तेमाल करते थे, दैट्स वेयर मिथोलॉजी, दैट्स व्हाट मिथोलॉजी इज, मुझे वही लगता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, यही है मैजिक।
अभी मैं गया था बड़ा,
जो भी है वही है बस।
सॉरी
हाँ बोलिए बोलिए।
अभी मैं गया था एक राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान की तरफ, वेस्टर्न ही बोलेंगे उसको, पाली जोधपुर साइड में, तो वहाँ पे अफीम का बहुत कल्चर है, अफीम बहुत वहां, मतलब वहाँ पे लोग चाय के साथ भी आपको देंगे, और वो एक लोकल उनका वो सीन है। तो मेरे को दो लोग मिले, अंकल थे वो, किस सफारी के लिए गए थे हम लोग, तो उन्होंने कहा अरे सर थोड़ा देंगे आप, मैंने कहा मैं नहीं करता नशे वगैरह, तो बोले नहीं नहीं आप थोड़ा तो आपको लेना चाहिए, तो मैंने कहा आप लेते हो, बोलता हाँ, तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा सर, ये एक रॉयल चीज है, इससे आप आपका जो मेंटल स्टेट है ना, आप यकीन नहीं मानोगे इतना अच्छा हो जाएगा, मैं इतना खुश रहता हूँ ना, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशी, कम खुशी खुशी मुझे महसूस होती है, पहले मुझे एसिडिटी की बहुत दिक्कत थी, दवाई लेता था, कोई दवाई नहीं है मेरे पास, मेरे के दर्द की भी दवाई खत्म हो चुकी है, और मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से, बहुत ही अच्छी मेरी जिंदगी चल रही है, आप एक बूंद लोगे तो आपको समझ आएगा। तो पहले दिन तो मैंने कहा हो सकता है कुछ हायर कॉन्शियस पे पहुंच गया, मैं वहां तक नहीं पहुंचा था, मेरे को बस एक बूंद की जरूरत है उसके लिए, फिर मैंने सोचा यार इतना आसान थोड़ी होगा जिंदगी में, सब लोग परेशान हो रहे हैं, एक बूंद तो सबको देता तो सबकी कॉन्शियसनेस इस तरह की हो जाएगी। तो फिर मैं जब उसको ढंग से समझने लगा उनको मैं, तो फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ये खुद बहुत परेशान है, आप सुबह से इसलिए परेशान है क्योंकि उनको मिली नहीं तो चिड़चिड़े हो रखे, और जब मिलेगी तो ये सारे डिल्यूजन में आके इनको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बेसिकली हैप्पीनेस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ डिल्यूजन का भी एक फॉर्म है, कि आप एक आप अपने आप को अच्छे से डिल्यूट कर दो, या फिर अपने आप को गैसलाइट कर दो कि आप बहुत हैप्पी हो, सो दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ अचीविंग।
यहां पे लाइव स्ट्रीम पे ऑलमोस्ट अच्छा
सॉरी,
यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे ऑलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई आता है जो कहता है कि मैंने ड्रग्स खा के ईश्वर को देख लिया। कोई ना कोई, मतलब ये मैंने साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हो, ये किया वो किया, द ब्रेन गोज इनटू अनदर स्टेट एंड यू सी दैट रियलिटी, और कोई भी एक्चुअली बता नहीं पाता कि उसने देखा क्या। मतलब कुछ देखा, क्या था वो मुझे नहीं पता, पर कुछ देखा, एंड दैट्स सपोज टू बी सेड इनफ। वो सिर्फ आईना देखते हैं, वो आईने को देखते हैं और बोलते हैं अब मैंने भगवान को देख लिया।
हाँ, नहीं नहीं इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विपस्ना में मेरे बगल में एक बंदा बैठा था, तो मैं मेडिटेट कर रहा था, मेडिटेट करते करते बेहोश हो गया। तो एक बार बेहोश हुआ, फिर थोड़ी देर दोबारा शुरू किया, दोबारा बेहोश हो गया, फिर ऐसे दो तीन बार वो बंदा बेहोश हो गया। तो फिर टीचर आए, स्पिरिचुअल जो टीचर है वहां के, बोले क्या हो गया बेटा? तो कहते सर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिखे। बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं देखने, तो बुद्धिस्ट कहता है नहीं सर तीनों दिखे। बोले बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश पे नहीं करना आपको मेडिटेट, आकृतियों पे नहीं करना, ये अंदर जाना है, आप क्या कर रहे हो आप चीज को देख के। तो देखना चाहता था बेचता रहा, तो उसको दिख गए और वो बेहोश हो रहा था बार बार नीचे के पास।
मुझे लगता है जो रामकृष्ण परमहंस का भी ऐसा ही कुछ हाल था, उनको तो सब दिखता था।
अच्छा,
वो कृष्ण दिखते थे, जीसस, मोहम्मद, सब दिखता था उनको। मोहम्मद के रूप में क्या दिखता था मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बिकॉज देयर इज नो इमेज। बट ये होता है, आपका जो कल्चरल बायस होता है वो आपके मेडिटेशन को हाईजैक कर लेता है कभी कभी।
हाँ मतलब डेस्परेटली आप कुछ, जैसे मेरे फैमिली के अंदर पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, चलो मेरे घर वाले देखेंगे नहीं। तो कुछ फैमिली के अंदर कुछ रिश्तेदार हैं गाँव के अंदर, तो वो शाम को उनके अंदर माता टाइप की आ जाती है और वो उछलने लग जाते हैं। तो शाम होती है 6 बजे, तो से मतलब उछलने लग जाते हो और कहते हैं कि मेरे अंदर माता आ चुकी है, जो मेरा भगवान ही हुआ चुका है। तो और पूरा घर उन्होंने रिलीजियस उस तरह से बना दिया है कि सब कुछ भगवान आ रहा है शाम को मेरे अंदर, सारी चीजें। तो वो भी एक फिर मैंने रियलाइज किया, इनिशियली मेरे घर वाले थोड़े से डर रहे थे, बोले कि अरे क्या सही में भगवान आ रहे हैं। फिर मैंने रियलाइज किया नहीं, इनका डिल्यूजन है, ये बहुत एक्सट्रीम रिलीजियोसिटी के अंदर जाना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि इसके थ्रू वो कुछ देख लेंगे या फिर किसी चीज को उस रिलीजियस माइंड सेट को अचीव कर लेंगे। तो इसके लिए वो डेस्परेटली वो कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को डिल्यूड कर लिया कि और वो मेरे अंदर ही आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो डिल्यूजन ये है कि
दुनिया के हर कल्चर में होता है। अमेरिका में इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस उनको मतलब स्पिरिट्स पोजेस करती हैं, फिर उनको कोई टच कर लेता है और स्पिरिट्स निकल जाती है। एक कहानी थी, एक छोटा सा शहर था, वहां एक बच्चा चाइनीज बोल रहा था और उस शहर में किसी को चाइनीज नहीं आती थी, राइट? तो द क्वेश्चन इज, वो बच्चा एक्चुअली चाइनीज में बात नहीं कर रहा था, वो कुछ तो बोल रहा था, ये सब उसको चाइनीज समझ लिया और बोल रहे थे इतनी फ्लुएंटली चाइनीज कैसे बोल सकता है कोई, और डेफिनेटली ये कोई स्पिरिट का इन्फ्लुएंस है, कुछ तो चल रहा था उधर। सो लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव कम फॉर यू, बिकॉज़ 40 मिनट हो गए हैं। ओ, ये तो हमारे पहचान के लोग हैं सब। डॉक्टर मेड्यूसा, वाह मोदी जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भाषण दे रहे हैं और इधर आप लोग उसको देखने के बजाय खुद बातें कर रहे हैं, एंटी नेशनल।
हाँ मैं एक्चुअली जब आया था तो मैं यही देख रहा था कि यार 8 बजे मोदी जी का भी है, एक हेडलाइन टुडे पे इस पे शायद राहुल कमल के साथ है।
सोहित मिश्रा जी ने कहा अमेजिंग डिस्कशन पीपल, थैंक यू सोहित,
थैंक यू।
हमारे पहचान वाले सब निकल रहे हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन है राहुल सेज, पशुपति सील में सब एनिमल्स और ऋग्वेदिक रुद्र के सारे मरुड़गण सेम क्यों है? ओके, सो इसमें ना दो चीजें होती है राहुल, एक होता है कि सेम नहीं है, सो जो सेमनेस है उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट किया जाता है, और बी पशुपति सील जिस टाइम की है उस टाइम पे रुद्र नहीं थे, रुद्र काफी बाद में आए थे और रुद्र के बहुत बाद शिव आए थे। तो आप लोग ये थोड़ा ज्यादा ही एंथुजियास्टिक होके वहां पे अपने धर्म को ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता आप एक्चुअली खुद ढूंढ रहे हो या नहीं, पर दैट इज द जनरल वेल एक्सेप्टेड आंसर। एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट दिस अनुराग?
नहीं मुझे पता ही नहीं क्या पशुपति है ये सारी चीजें, बट उनका
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सीन नंबर 420 है उसके बारे में
नो आईडिया, बट इनका ये पिंक फ्लॉयड वाला इमेज अच्छा है।
मनोज ने कहा इंग्लिश की दो तीन गालियां सुना दो गेस्ट जी, दिल को सुकून मिलेगा, आपका वीडियो पॉडकास्ट देखा था। इंग्लिश की गालियां, ये कौन सा था,
कौन से सुना रहे हो?
पता नहीं। मिशे ज़करिया सेज कैन यू प्लीज आस्क अनुराग व्हाट आर रॉनी'स व्यूज ऑन मेडिटेशन एंड गुड वाइब्स? रॉनी आपको ऑल्टर ईगो
सारे इन्फ्लुएंसर्स के होते हैं कि जो मैंने बताया था
क्या
कि मेडिटेशन एज अ एक तरह से आप एम्पैथी क्रिएट करने वाली कि मेडिटेट करके आप इन सब चीजों से दूर रहो। तो
अच्छा मुझे कभी कभी लगता है आपके वीडियोस देख के कि जेएनयू ने आपको ट्रॉमेटाइज कर दिया था या पहले से ट्रॉमेटाइज
था। जेएनयू ने,
हाँ
जेएनयू ने
हमारे, हाँ जेएनयू ने, मतलब
बहुत अच्छी
लगा जेएनयू ने किया। आपका जो जनरली आपका जो एक जो टोन आपका कैरेक्टर लेता है व्हिच इज अ स्लाइट पॉम्पस एटीट्यूड टुवर्ड्स इम्पोर्टेंट इश्यूज, जो कि वो मतलब रॉनी जैसे कैरेक्टर समझता है कि उसको वो चीजें समझ में आती हैं पर असल में नहीं आती है एंड इज ग्रॉसली मिस इंटरप्रेटिंग देम एंड यूजिंग देम, लाइक जो कल वाला है कुछ वीडियो था जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंटरप्रेट कर रहा था यूजिंग माई प्रिविलेज फॉर गुड और समथिंग।
यस यस यस,
इसका कोई स्पेसिफिक सोर्स था या
दैट वाज हैंगिंग आउट इन दिल्ली हैबिटेट सेंटर, फिल्म मेकर से मिलते थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से मिलते थे, तो दैट पर्टिकुलर सर्किट के अंदर आई रियलाइज दिस होल थिंग। उस टाइम पे क्या होता था कि ये सारी चीजें तो एक कास्ट का 100% इनविजिबिलाइजेशन था जब उस टाइम पे थी 2012 की, उसी टाइम भी जेएनयू से थोड़ा पहले की बात बता रहा हूँ, जेएनयू या फिर उसके अराउंड। तो ये सारी चीजें मैं सुनता था, मैंने कहा यार इसमें कोई भी कास्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा, जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के अराउंड इतनी सारी ये सारी जो दिक्कतें हैं वो सारी शुरू हो रही। तो आई वॉज, हाँ मैं उस चीज से मुझे बड़ा आई वॉज अनॉयड बाई दैट एंड वेरी इरिटेटेड बाई दैट एंड आई वॉज लुकिंग फॉर माई टाइम कि मैं कब इस तरह की टाइम आए जब मैं बोलूँ इन चीज़ों के बारे में कि यार तुम्हारी जो तुम थॉट प्रोसेस है इतनी लिमिटेड है और जो तुम ये चेंज करने की बात कर रहे हो वो इतना ज्यादा लिमिटेड, उसके अंदर वोकैबुलरी और इतना लिमिटेड लोगों का साथ उसमें लेके चल रहे हो, तो वो मेरा था कि वी शुड डिस्कस अबाउट इट। तो उसी को मैंने सटायरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एक तरह से रॉनी के थ्रू। तो और जब मैंने किया था लोग, आई मीन मैंने ये जो था वो इंट्यूशन से बनाया था ये पूरा कैरेक्टर, तो लोगों ने मेरे को फिर बोला कि अरे यार हम इस रॉनी को जानते हैं, हमें वो डेटिंग पे मिला, हमें बंबल पे मिला, हमें इधर मिला, इधर मिला। मैंने इंट्यूशन पे बनाया, इट्स नॉट लाइक मैं किसी रॉनी को जानता हूँ, इट्स जस्ट इंट्यूशन एंड दैट इंट्यूशन समहाउ वो हिट कर गया जो मतलब राइट जगह पे। सो
नहीं, आई थिंक आप अपने आप को थोड़ा कम क्रेडिट दे रहे हैं, आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास के लोगों से क्योंकि ये बहुत कॉमन है।
ऑब्जर्व किया था, बट ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर पे बेस्ड है, इट्स जस्ट लोगों को देख के। और मेरे को इस चीज में ज्यादा मजा आता है जहाँ पे ह्यूमर देखने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जैसे कि लिबरल और ये सारे लोगों में हो जाता है कि अरे हमारा मजाक या हम पे मत हंसो, या फिर कोई मैंने गाना उनको लगता है अटैक, हाँ। अटैक नहीं है, कोई भी ह्यूमर है कोई जोक है किसी पे मैं कर रहा हूँ तो वो किसी चीज पे अटैक नहीं है, वो ये कि आप हर चीज को इतना सीरियसली मतलब उसके अंदर भी कोई एब्सर्डिटी होगी उसको भी करो। जैसे अशोक का मैंने बनाया तो बड़े लिबरल उसमें गुस्सा हुआ, अरे लिबरल यूनिवर्सिटी को अटैक कर दिया, ये कर दिया, क्या अटैक कर दिया भाई, एक पर्टिकुलर आप उस चीज की जो एक क्लास या कास्ट प्रिविलेज के बारे में भी मजाक उड़ा रहे हो तो आप देखो और उससे थोड़ा ठीक होने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो उसको, आप ये सोच रहे हो कि इससे आप पे कोई अटैक हो गया, अगर आपको गिरा दिया गया तो आप इंडिया का पता नहीं कब थोड़ा ठीक होगा, लेट्स सी।
सो आप अपने यूट्यूब चैनल को किसी और दिशा में ले जाने की सोच रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाहेंगे?
हाँ हाँ, एक्चुअली ना मैं सोच रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर चूंकि मैंने एक कैमरा ले लिया अभी नया, तो कैमरा और मेरे थोड़े साउंड इक्विपमेंट्स आ गए वायरलेस, तो मैं सोच रहा था कि आई कैन नाउ शूट वाइल वॉकिंग और वाइल इन द रेस्टोरेंट और ऐसे कहीं पे भी आई कैन शूट नाउ बिकॉज ऑफ दैट कैमरा एंड द माइक, स्मॉल कैमरा एंड स्मॉल माइक. तो मैं सोच रहा था कि ऑन द गो लाइक एम फूड फॉर थॉट विद एएमवी, तो आप खाना वाना खा रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे हो, किसी सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो और उसके अंदर यू डिस्कस सीरियस सीरियस टॉपिक
That's
या
a good
फिर कुछ भी
idea.
पॉप कल्चरल टॉपिक, विच इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन टॉपिक, कुछ भी हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कल्चर हो सकता है, सोसाइटी, कास्ट, क्लास, कुछ भी. तो बट दैट इज द डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन इन अ वेरी फ्री फ्लोइंग स्मूथ एंड अराउंड द सिटी. क्योंकि मुझे ये जो पॉडकास्ट का जो आइडिया है ना, ये वीडियो पॉडकास्ट पे मैं कभी जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ये बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है, या थोड़ा मजाक सा लगने लग गया, एक माइक सामने पड़ा है ये वाला और पीछे ब्लैक है, सामने बंदा बैठा है, दो बंदे बकवास कर रहे हैं, तो
दो कैमरा लगे हुए हैं.
ये और उसमें भी लिमिटेड बातें हैं, सब पता है कि क्या क्या टॉपिक पे बातें होनी है,
हाँ
अगर सारे टॉपिक्स भी पता है उनके पास गेस्ट नहीं होने को, बार बार वही नाम भी क्या
हाँ
लूंगा उनके में, बार बार तो सेम चीजों पे बातें हो रही है, सेम चीजों पे. तो मुझे लग रहा था इसको एक्सपेंड करके रूम में क्यों बैठना, रूम पे तो मतलब कुछ ये लॉकडाउन वगैरह में हो या फिर आप नहीं निकल सकते, तो मैं थोड़ा सा लाइव देना चाहता हूँ, सिटी का भी वाइब उसमें कैप्चर हो, कल्चर भी थोड़ा कैप्चर हो, उसके अंदर कुछ कॉन्वर्जेशन है, तो वो कोशिश कर रहा हूँ. तो अब वो उसके लिए थोड़ी बहुत टीम बनानी पड़ेगी, तो वो मैं देख रहा हूँ कि उसको मैं हाउ टू गेट समथिंग बजट आउट ऑफ इट और ये इस तरह का, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी मोनेटाइज नहीं है, मेरा ना तो यूट्यूब मेरा मोनेटाइज है, बट यूट्यूब पे मैं बहुत कम पोस्ट करता हूँ तो वो कुछ उसमें आता नहीं है, बाकी स्पॉटिफाई और ये सारी चीजों से मेरे को कुछ मिलता नहीं है,
तो
ये
ये
पे
जो
नहीं
सीरीज
करते
बनाओगे ये
हैं,
यूट्यूब पे नहीं डालना है.
ये यूट्यूब पे डालनी है, बट मुझे थोड़ा सा उसके लिए अब फंड लोगों को जोड़ने के लिए हो चाहिए, तो वो मैं देख रहा हूँ कि हाउ टू डू
अच्छा
दैट. यूट्यूब के लिए है ये वाली सीरीज.
अच्छा अच्छा सो इट्स गोइंग टू बी थॉट्स कंबाइंड विद फूड बिकॉज यू वांट टू ट्रैवल ईट फूड एंड टॉक.
या
साउंड्स वेरी
मैं
इंटरेस्टिंग.
कहीं पे
सम
भी
साउंड्स
मेट्रो में भी
लाइक
बैठ के, क्योंकि मैंने दो
हाँ
इसके शूट किए थे, आई वाज टॉकिंग टूरिज्म एट द डिनर टेबल इन केरला, तो एक मंगेश दहीवले थे तो उनके साथ मैंने किया, वाज वेरी वेरी गुड माइंड, मतलब मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि आप खाना खा रहे हैं, बीच में खाना आ रहा है, हम खाना भी खा रहे हैं और बुद्धिज्म की बातें चल रही है, बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है और कुछ नहीं, उसमें छोटा सा कैमरा वहां पे लगा रखा है, दोनों बातें कर रहे हैं उसके थ्रू, तो वो मुझे मतलब वो फॉर्मेट मुझे बड़ा अलाइव लगा, मेरे को समथिंग व्हिच इज अलाइव एंड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट दैट आर देयर, तो वो आई आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट, कि इसको मैं किस तरह से थोड़ा और एक्सप्लोर करूं इस कॉन्सेप्ट को, वेर यू आर पब्लिक स्पेसेस पे यू आर डिस्कसिंग थिंग्स और चलते फिरते कर रहे हैं, कि एक लाइफ भी चल रही है एंड देन यू आर डिस्कसिंग इट, सो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग इट, लेट्स सी.
So, how do you feel about political commentary as a content genre that many people do? कुछ लोग तो पॉलिटिकल कमेंट्री अपने न्यूज़ कवरेज में ही डाल देते हैं, पर आपका जो पॉलिटिकल कमेंट्री होता भी है तो वो आपके सोशल ऑब्जर्वेशंस के अंदर ही मतलब उसी के थ्रू मैनिफेस्ट हो जाता है.
हाँ मतलब फॉर्म के थ्रू आई लाइक टू डू दैट थ्रू द फॉर्म, और उसके अंदर भी काफी थोड़ा सटलिटी और थोड़ा मिस्टीरियसनेस और थोड़ा क्राफ्ट के साथ हाउ डू आई प्ले, तो मेरा इतना कुछ वो नहीं है कि अरे यही खराब है यही अच्छा है या फिर यही अच्छा है यही खराब है, मुझे सारी चीजें खराब लगती है सच बताऊं तो मैं जिस तरह से चीजों को देखता हूँ तो वो ऐसी तरह से देखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड कोई बहुत अच्छी है हमारे लिए या फिर ये पार्टी खराब है दूसरी पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छी है, कि मैं खुद एक दलित बैकग्राउंड से आता हूँ तो हमें तो हर पार्टी ने कुछ खास दिया नहीं, तो उस हिसाब से मैं चीजों को थोड़ा सा डिस्टेंस ली और उसमें उस हिसाब से मैं एक ह्यूमर या फिर पॉलिटिकल कमेंट्री और प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ढूंढने की सोचता हूँ, अब वो चाहे कोई भी पार्टी हो कुछ भी हो, तो ऑब्वियसली उसमें अब दिक्कतें जो होगी सबसे ज्यादा वो उस पे होंगी, जो जिस जो हमारी करंट रूलिंग पार्टी है, तो उसके चक्कर में कई बार मेरे को तो दिक्कतों का वो पड़ा सामना करना पड़ा, एक बार यूएस में मैंने कुछ वीडियो बना दिया था वैक्सीन सर्टिफिकेट पे, तो उस पे बवाल मच गया, प्रधानमंत्री ऑफिस से कुछ हो गया और सुधीर चौधरी ने कुछ शो कर दिया और काफी कुछ हो गया, तो मैंने कहा ये क्या पागलपन है, जोक्स के लिए इतने लोग पागल हो रहे हैं इसके
उसका
अंदर,
कुछ एडवर्स
तो
इफेक्ट
उसका
पड़ा
मैंने ये
आप पे?
देखा. हाँ उस चीज का तो काफी पड़ा ना, काफी उन्होंने बहुत परेशान किया, उन्होंने बहुत
क्या
परेशान
पढ़ा था,
किया,
क्या हुआ था? इफ यू
लाइक
वांट टू टॉक
मेंटली
अबाउट
मुझे
इट.
काफी मुझको काफी स्लो डाउन होना पड़ा कई चीजों में, कहा अरे
अच्छा
ये सब नहीं कर सकते ये सब नहीं कर सकते, तो वो उन्होंने काफी किया, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं स्लो डाउन भी हुआ अपने काम को लेकर. अच्छा सीधा मैं नहीं डाल सकता, आई हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल जो मैं कर रहा हूँ वो सब है. जो मैं कर रहा हूँ उसको लोग देख भी रहे पहले, तो उस हिसाब से मतलब हो सकता है कि कुछ चीज आपने थोड़ी ऊपर नीचे हुई तो आपका अरेस्ट भी हो सकता है कि तो इस तरह की चीजें भी होगी. तो उससे पहले मेरा ऐसा था कि मैं चुपचाप कर रहा हूँ, बंकर से मैं बंदूक मार रहा हूँ, ऐसा था कि बंकर के अंदर चुप चुप कर, तो इस तरह का था. लेकिन इस तरह की इतने सारे लोगों के बीच में चीजें जाने लग गई, ये सब करने लग गया, आई टू लिटिल आई टू फिगर आउट न्यू वेज टू से द सेम थिंग बेसिकली थ्रू मोर मोर नुआंस्ड और मोर लेयर्ड वे. Which is also interesting for me as a creator. It's more challenging. तो उसमें मेरे को personally बड़ा मजा आता है कि अच्छा it's some kind of beautiful piece which has some kind of layers in it. Somebody wants to take it out rather than saying something which is very blunt.
अनुराग आप माइक के थोड़ा पास आ सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं उनको सुनाई
नहीं. हाँ अभी अभी सुनाई दे रहा.
So हाँ मुझे सुनाई दे रहा. I think वो भी volume थोड़ा up down करेगा तो समझ में आ जाएगा. But आपको क्यूमुलेटिवली क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन भारत में ज्यादा आसान होने वाला है या ज्यादा मुश्किल होने वाला है, या जैसा है वैसे ही रहने वाला है?
देखो ये जो चीज है ना, मैं बता दूं, अगर कोई ये इस चीज का आंसर दे दे कि इंटरनेट क्या होने वाला है या फिर आगे इसके क्या ट्रेंड्स है, क्या इसके फिगर आउट होने वाली है, तो वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड होगा. क्योंकि हमें इंटरनेट का कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है. क्योंकि मैं इंटरनेट को बहुत क्लोजली स्टडी करता हूँ, मैं जो प्रेडिक्शन या फिर सोचता हूँ कि ऐसा कुछ होगा या फिर, तो वो भी चीजें वो हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक चीज को जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, स्पेशली पॉलिटिकल स्पेयर में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने एक चीज देखी अभी रिसेंटली कि ग्लोबली जितने भी पॉपुलर मीडियम थे जो कि पहले बहुत प्रेस्टीज के मीडियम थे, वो बड़े गिर गए एक तरह से. जैसे आपका NYT हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, उनकी पैलेस्टीन की आप कवरेज देखोगे कि किस तरह की उन्होंने की. तो जो स्पेशली जो यूथ यंग जनरेशन है, जेन ज़ी है या फिर ये लोग हैं, इनको लगता है कि ये तो सब प्रोपोगंडा का हिस्सा था. तो वो जो चीज एक टाइम पे थी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ की जो जगह थी, लिबरल एब्सोल्यूट ट्रुथ की कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, तो वो चेंज हो गया. अभी NYT को आप देखोगे लिबरल सर्किल में, वोक सर्किल में, उसको इतनी गालियां देंगे, तो वो उसका एक वो डिमोलिश हो गया. इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले एक सिंबल ऑफ ट्रुथ की तरह काम करती थी, वो डिमोलिश हो गई. तो अभी क्या हो रहा है कि आई थिंक द नेक्स्ट वेव जो है वो है इंडिविजुअल क्रिएटर्स की, जो दिखने में ऐसे लगते हैं कि वो इंडिविजुअल है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइजेशंस. तो इंडिविजुअल क्रिएटर को लोग ज्यादा सुनना चाहेंगे, उसको उनको लगेगा कि हाँ ये ज्यादा सच बोलने की इसमें ताकत है क्योंकि ये इंडिविजुअल है, तो उस पे लोग उसकी बात सुनने के लिए लोग इंडिविजुअल की ज्यादा ग्रेविटेट होंगे. तो आप अगर
बेसिकली इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं.
नहीं, आप रिसेंटली अगर देखो जैसे ध्रुव राठी, मतलब उसके जो वीडियोस आप देख रहे हो इतने ज्यादा उसके वायरल हो रहे हैं, तो उसी के लिए है क्योंकि उनको लगता है अच्छा ये अकेला बंदा है, बहुत रिसर्च करता है, उसके ये करता है, एंड पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू लिसन टू हिम देन टू लेट्स से इंडियन एक्सप्रेस की कोई वीडियो होगी या फिर शेखर गुप्ता का कोई वीडियो होगा, फिर इस तरह के कोई जो ओल्ड जर्नलिस्ट है उनकी वीडियो के मुकाबले. तो ये एक ट्रेंड है कि तो मैं कुल मिला के बात ये कह रहा हूँ, अगर आप एक सीरियस क्रिएटर हो जो कि फैक्ट्स और उसके साथ चीजें करता है या फिर समझते हैं जो इन चीजों के साथ, तो अगर आप इसमें उतरोगे इस वक्त कंटेंट क्रिएटर में और आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करोगे, देन इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट काइंड ऑफ अ क्रिएटर, इंडिविजुअल क्रिएटर. माय पॉइंट वाज दैट कि वो इंडिविजुअल क्रिएटर भी हो सकता है कि इंटरेस्टिंग हो. और लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि वो, मतलब होते हैं लोग बेवकूफ तो है बहुत सारे, इतने भी नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कोई जो चीज है वो कब तक वो झेलेंगे, जो आप हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा और वो सारी चीजें, तो उनको कब तक झेलेंगे. लोगों को एक बेसिक कॉमन सेंस तो होता है लोगों में, ऐसी बात नहीं है. आप जितने लोगों से आसपास बात बात करोगे, ज्यादातर लोगों में होता है, सब में नहीं होता बट ज्यादातर लोगों में मैंने देखा होता है. तो हाँ, आप एज अ क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्ड करोगे, एक एज अ क्रिएटर एक अच्छा और सेंसिबल चीज देने की कोशिश करोगे, तो आई थिंक देयर इज अ फ्यूचर इन दैट. बट हाँ, अब यह है कि वो मार्केट बहुत सारे प्लेयर्स हैं उसके अंदर, एंड हाउ विल यू स्टैंड आउट, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ विल यू स्टैंड आउट, नॉट जस्ट स्टैंड आउट बट कंसिस्टेंटली आप किस तरह से वो करोगे.
हाँ, जैसे आपने इनको देखा ना, अजीत अंजुम.
हाँ,
ही स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल एज एन इंडिविजुअल और उनको कुछ उन्होंने चीजें कवर की. अब उनका यूट्यूब चैनल एक मीडिया कंपनी के अंडर आ चुका है जो उनकी कंपनी है.
बिल्कुल.
सो ये टेम्पटेशन ना कुछ इंडिविजुअल क्रिएटर्स के ऊपर होता है कि ओके, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुंचा, अब मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे 4-5 लोग लाने और अपनी कंपनी शुरू करनी है, उसको रेजिस्ट करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है आप जो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं इंडिविजुअल्स के बारे में, ये अप्लाई करेगा उनके ऊपर जो कि इंडिविजुअल रहना कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो ध्रुव राठी कंपनी है, ध्रुव राठी हैज अ टीम, इट्स उसके वीडियो क्लास में क्रेडिट करता है टीम ध्रुव राठी। हाँ अपीयरेंस इंडिविजुअल वाला है। हाँ
वो ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी आप बिना टीम के नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यू appear like individual, that's my point. Obviously there are many people behind him and he's not individual by any sense, he might have more resources than any alternative news organization, but that's the appearance.
Okay, so hum log almost 1 ghante pe hain, mere paas ek sawal hai jo ki artificial intelligence ke bare mein hai aur मैं ये आपसे जानना चाहता था, आपको क्या लगता है, आपने एआई के बारे में मतलब कोई व्यूज फॉर्म किए हैं कि एआई टाइप की चीजें चैट जीपीटी मतलब एआई आर्ट जनरेशन वगैरह ये किस दिशा में जा रहा है, क्या ये एक आर्टिस्ट के लिए क्रिएटर के लिए अच्छा साबित होने वाला है या बुरा साबित होने वाला है?
नहीं, एआई कांट क्रिएट आर्ट बिकॉज़ इट डजंट हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा। सबसे पहले
मे बी वी कैन गिव इट सम।
नहीं मैं एक्चुअली एआई का मैं काफी मुझे बहुत पसंद है और मुझे हर किसी तरह की जुगाड़ और ये चीजें रिमिक्सेस और ये सारी चीजें आई रियली लाइक इट। और जितना मैंने यूज किया एआई को और के टूल्स को, चैट जीपीटी मैंने बहुत यूज किया, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ये बेसिकली इट्स गुड फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ अ क्लरिकल वर्क जिसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, बट वो टाइम बहुत वेस्ट करते हैं लाइक राइटिंग मेल, करेक्टिंग इंग्लिश, फॉर्मिंग समथिंग। So it's a good in that sense, AI और ये सारी जितने भी tool हैं कि it's a good for एक थोड़ा सा आपको मदद कर सकता है। Second, AI is basically a curation thing. Basically, अगर आप अच्छे curator हो कि आपने आपको knowledge बहुत है किसी भी field की, आपको writing का अच्छा knowledge है कि आप कैसे लिख सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तो आप एक अच्छे curator हो तो AI में जितने options आएंगे जितनी चीजें आएंगी you can pick something out of it and create something good out of it. So basically curation ka kaam jo hai AI ke andar wo important hai, but curation tak pahunchne ke liye aapko kafi achhi knowledge ki zarurat hai, tab aap curation pe pahunchte ho. To wahi mera point wahi tha ki ek acche helping hand ki tarah ek work kar sakta hai, but replacement ka to koi sawal hi nahi hai jis waqt jis ye halat mein kuch bhi nahi hai replacement ka.
Nahi main ye bhi notice karta hu kuch log hai jo kehte hain ki
clerical job kar jayega logon ki kuch
नहीं, कुछ लोग ये कह रहे थे लाइक आई रिसेंटली सॉ अ यूट्यूबर जिसने जनवरी में कहा था कि जिस लेवल का इंसान करते हैं उस तक एआई को पहुंचने में कम से कम 4 साल लगेंगे। मार्च में उसने वीडियो बनाया, मैं गलत था, ये होना शुरू हो चुका है। 3 महीने लगे जिस चीज को वो 4 साल बोल रहा था। सो आपने ये देखा है वेस्ट वर्ल्ड HBO वाला सीरीज?
नहीं,
तो वेस्ट वर्ल्ड देखना, उसमें वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान बनाने के लिए उन्होंने रियलाइज किया कि इसको ट्रॉमा की जरूरत है। सो दे बेसिकली क्रिएटेड एंड्रॉइड्स एंड दे आर पुटिंग देम इन हॉरेंडस सिचुएशंस वेयर यू नो टॉर्चर, सफरिंग एटसेट्रा। बहुत अच्छा सीरीज है, देखना उसको। उसको उसके ऊपर पुरानी फिल्म भी थी, बट आपने जो कहा इसके ऊपर एक्चुअली एक पिक्चर बनी हुई है। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा, देखोगे तो।
अच्छा, जब देखता हूँ। Although, मैं तो चाहता हूँ कि AI थोड़ी चीजें और आसान कर दे, तो I'm up for it, but अभी ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा कुछ खास नहीं रहा।
इतना मुझे इस बारे में आपका क्या कहना है कि इस बारे में आपका क्या कहना है कि जब लोग कहते हैं कि AI बेरोजगारी क्रिएट करेगी,
वो तो आप पुराने आर्गुमेंट है कि इससे हो जाएगा। कंप्यूटर का भी बहुत लोग बोलते थे कि कंप्यूटर आने से बहुत बेरोजगारी क्रिएट
हो, हुआ भी ना
AI का। पता
फॉर अ टाइम इट डज क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बट देन पीपल लर्न हाउ टू डील विद इट एंड देन दे मूव ऑन।
वो चीजों तो एक 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 डिबेट है, अब उसके अंदर आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी कि आप उसका अल्टरनेटिव किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। बट वो AI में क्यों है, जैसे अब मैं अभी जहां से मैं आ रहा हूँ अपनी गाड़ी, मतलब जहां से मैं एंटर किया मैंने अपनी सोसाइटी के अंदर, तो पहले वो था कि एक बंदा उन्होंने रख रखा था जो कि जैसे कोई एंटर होता था तो उसका वो ऊपर करता था, क्या बोलते हैं उसको, नाका टाइप का जो होता है ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर कर रहा था कि गाड़ी, हाँ दैट थिंग, वो ऊपर नीचे होती है, तो कि गाड़ी एंटर हो जाए फिर कोई जाएगा तो वो नीचे को, उसका जॉब था अच्छा खासा, 10 मिलते होंगे जितने मिलते होंगे उनको पैसे। अभी मैंने देखा उन्होंने इलेक्ट्रिक लगा दिया, उसमें कुछ नहीं, आपकी गाड़ी स्कैन करेगी और आप अंदर से बाहर जाओ, किसी की जरूरत नहीं है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि हर हर चीज के अंदर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उस जॉब को रिप्लेस कर रही है, तो अब ये रिप्लेसमेंट वाली चीज सिर्फ एआई तक ही क्यों, हम क्यों सोच रहे हैं कि वो लिमिटेड है।
ओके सो मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ, मे बी यहाँ पे आपका कोई बायस काम कर रहा है, क्योंकि जब वो बिल्डिंग का वो जो बैरियर उठाने वाला जो काम है वो रिप्लेस हो गया मशीन द्वारा, पर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपका काम रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं।
नहीं कर समझा नहीं मैं।
आपने कहा था कि एआई इंसानों जैसा आर्टिस्ट लेवल काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ट्रॉमा नहीं है चाइल्डहुड वाला, राइट?
नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसा
नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट आई जनरली थिंक ये पिकअप कर रहा हूँ कि एआई इंसानों के लेवल का आर्ट कभी बना नहीं पाएगा।
हाँ नहीं, मेरा बट पॉइंट वही था ना कि जो क्लेरिकल है जिसमें इतना एक्सट्रीम लेवल की स्किल नहीं है तो वो तो सारी जॉब हमेशा ही शेकी लेवल पे रहते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि इंग्लिश ठीक करना है टाइप का, कि उसका एडिट में बस इसकी ग्रामर ठीक करना। अब ग्रामर के टूल्स तो आ चुके हैं पहले से ही, तो फिर वो जैसे पहले, हाँ ये हो सकता है कि पहले मैं किसी को देता था थोड़े बहुत पैसे भी देता मैंने किसी ग्रामर वगैरह करने, अब वो मैं नहीं करूंगा, वो एआई को बोल दूंगा कि उसकी ग्रामर ठीक कर दे, इंग्लिश स्पेलिंग ठीक कर दे टाइप की चीजें, तो वो हो सकती है। बट उसको एडिट करने का काम है कि उसको अच्छा बनाने का काम, वो एआई नहीं कर सकता मेरे टेक्स्ट को, क्योंकि वो तो उसको इतना एनिमेटेड बना देगा कि वो रेडिकुलस है। मैंने करके देख लिया बहुत बार, इसको मैं बना सकता हूँ, मैं नहीं बना सकता। लेकिन किसी, मैं एडिटर को लेता हूँ जो ढंग का एडिटर है, वो टेक्स्ट को उसमें कुछ जादू डाल देता है क्योंकि वो अपना एक इंटेलिजेंस यूज करता है, तो उस लेवल पे इट इज नॉट स्टिल, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट।
मुझे लगता है कि जल्दी ही एक ऐसा समय आएगा जब हम लोग एआई बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि लाइक जैसे मुझे क्या लगता है, पता है आपको ये पता आरएसएस फीड्स जो हम लोग पहले यूज करते थे ब्लॉग्स को पढ़ने के लिए, आरएसएस फीड्स के बेसिस पे अब भी फेसबुक इंस्टाग्राम सब उसी के बेसिस पे चलता है, पर हम लोग आरएसएस फीड्स की बात नहीं करते क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर समा गया, राइट? क्रिप्टो का वही हुआ, क्रिप्टो का वही हुआ, एनएफटीज का वही हुआ, ये चीजें गायब नहीं हुई है, इनके ऊपर जो हाइप बना हुआ था वो खत्म हो गया, पर ये चीजें सिस्टम के अंदर समा गई है, काम कर रही है बैकग्राउंड में। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये इंटरनेट का इतना इंटेग्रल हिस्सा बन जाएगा कि हम लोग एआई बोलना बंद कर देंगे, इट इज द इंटरनेट,
हो सकता है।
और उसके बाद एक टाइम आएगा जब हमको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि क्या कि हम एआई से बेटर कैसे हैं, मतलब शायद ये मेरे अंदर का साइंस फिक्शन राइटर बोल रहा है, पर हो सकता है ये समय बहुत जल्दी आ जाए।
जैसे हमें टेक्नोलॉजी हमसे पूछे आर यू ह्यूमन,
उसके नीचे लिखना चाहिए हु आर यू टू आस्क मी दैट, तुझे हक किसने दिया मुझसे पूछने का, तू मुझसे पूछेगा?
जॉब खाने, जॉब खाने का अभी मुझे याद है, मेरी भी जॉब खाई है इसने, क्योंकि पहले मोदी का करता था तो बड़ा एक्सक्लूसिव सा होता, बहुत कम लोग कर पाते थे मोदी की मिमिक्री, दो तीन ही लोग थे हो जो इतना एक्यूरेटली उसमें जाते थे। अभी देखा है कि बात कोई भी कर रहा है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको डालना है और वो मोदी का अच्छा मिमिक्री तो आप देखोगे इतनी सारी मिमिक्री, या फिर किसी की भी करनी है उसका डाल दो तो बड़ा आसानी से उसको कर देता है, तो वो भी है इसके अंदर।
ठीक है, सो आई एम एट द एंड ऑफ माई क्वेश्चन है अनुराग, अगर आपको कोई चीज लास्ट में ऐड करनी है या पूछनी है तो आप पूछ सकते हो।
नहीं हमने मेरे हिसाब से कर ली, जितनी
काफी कुछ कवर कर लिया,
काफी पक गए होंगे हमारी बातों से।
नहीं नहीं कोई लोग नहीं पके, लोग पीपल आर एंजॉयिंग इट एंड मेनी पीपल आई इनफैक्ट लाइव चैट में मैंने देखा कि मैंने अनुराग के पॉडकास्ट देखे, उन्होंने मेरा सोचने का नजरिया बदल दिया, आई डोंट नो व्हाट दे मीन बाय दैट, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ फैंस ऑफ योर पॉडकास्ट हियर।
सुपर्ब सुपर्ब, मेरे पास काफी सारे मैसेज आए कि हम ये मैनिफेस्ट कर रहे थे।
अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे,
और अनुराग वाला
कोइंसिडेंस है दोस्त लोग,
कोइंसिडेंस, हमें पता था एक दिन ये होगा, मैंने कहा मुझे नहीं पता था एक दिन ये होगा।
मुझे पता था एक दिन होगा, मुझे पता था एक दिन होगा, और भी बहुत कुछ होने वाला है जो तुम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, चिंता मत करो, हो जाएगा हो जाएगा। तो एनीवे अनुराग थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड आपके आने वाले चैनल और प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू सुपर, ये शायद मेरा दूसरा ही था, इससे पहले मैंने एक किया था लाइव स्ट्रीम सुचारिता के साथ।
किसके साथ किया था वो?
और ये सुचारिता के साथ था, जोन ऑफ इंटरेस्ट
मूवी सुचारिता के साथ।
अच्छा, ये दूसरा मेरा लाइव स्ट्रीम था, तो आई थिंक आई रियली एंजॉयड द होल प्रोसेस, रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू।
यू शुड स्टार्ट अ लाइव स्ट्रीम,
कोशिश करेंगे कि एक विल टॉक ऑन पॉडकास्ट आल्सो, फ्यूचर के अंदर कुछ करते हैं.
श्योर, ठीक है. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस. बाय बाय.
थैंक यू विमो एंड थैंक यू एवरीबॉडी हु हैव लिसनड इट एंड कमेंटेड. थैंक यू सो मच.
बाय. So that was Anurag and that was today's episode. 1 hour 7 minutes ho gaya hai. I hope you liked the conversation. Main iska thumbnail shayad kal ke aas paas change karunga kyunki thumbnail mein mujhe likhna hai motivation, meditation and life lessons from Anurag minus Verma or something like that, kyunki wo acha rahega. Bahut se log usko motivational content samajh ke definitely aayenge. So yeah, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे ज्वाइन बटन को दबाकर इसके मेंबर बन सकते हैं. हम लोग हर सैटरडे लाइव स्ट्रीम करते हैं. पब्लिक लाइव स्ट्रीम हर सैटरडे होती है और वेडनेसडे को एक मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम होती है. मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं पर वो मैं मेंबर्स के साथ बात करके डिस्कस कर रहा हूँ. अगर आप इस चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/vimo पर जाके कर सकते हैं. या अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में एक सुपर थैंक्स बटन आता है, उस पर क्लिक करके आप कोई अपने पसंद का अमाउंट पे कर सकते हैं. और विथ दैट आई से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. बहुत सारे कमेंट हैं तो सही. थैंक यू टू द मॉड्स. थैंक यू तरंगा, थैंक यू अपूर्व, थैंक यू हुएवर एल्स इज द मॉड दैट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ. एंड ऑफ कोर्स हेलो गोलू, हाय. सो आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे. अंटिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट.